Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Subodh Mishra.
Namaskar, shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj din hai mangalwar aur hum aadhe ghante ke is show mein share bazaar aur arth jagat ki khabron par charcha karenge. आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन. पुनीत, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग.
Thank you, Subodh. Yes, let's begin with the headlines, friends. India's retail inflation eases to 3.16% in April, lowest since July 2019. Benchmark domestic equity indices end around 1.5% down amid profit booking. Sensex slumps over 1,200 points. Nifty closes below 24,600. And India proposes retaliatory tariff to counter US duties on steel and aluminium at WTO.
अप्रैल में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर लगभग पौने छह साल के न्यूनतम स्तर 3.16% पर रही. देश के शेयर बाजारों के सूचकांक पर मुनाफा वसूली का साया. सेंसेक्स 1,200 अंक से ज्यादा गिरा. निफ्टी 24,600 से नीचे. और भारत ने अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमिनियम पर लगाए गए आयात शुल्कों के जवाब में WTO में शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई 2019 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है. आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.16% रही, जो मार्च में 3.34% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में 2.92% और शहरी क्षेत्रों में 3.36% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई. पूरे देश के उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर फिलहाल 1.78% बताई गई है, जो मार्च में 2.69% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति दर मार्च के 2.82% से कम होकर 1.85% पर आ गई. इसी तरह शहरी क्षेत्र में इसका आंकड़ा अप्रैल में 1.64% रहा, जो मार्च में 2.48% था. मंत्रालय ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर 2021 के बाद न्यूनतम स्तर पर है. मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में सब्जियों, दाल और अन्य उत्पाद, फल, मांस, मछली इत्यादि के मूल्यों में आई गिरावट से मुद्रास्फीति कम हुई है. पुनीत, मुद्रास्फीति के इन आंकड़ों को उपभोक्ता के हिसाब से देखें और प्रोड्यूसर्स के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप विश्लेषित करें.
तो सुबोध, आपने बहुत एक अच्छा एक पहलू इसका उजागर किया कि अगर हम उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के हिसाब से इसको देखते हैं तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आने से परचेजिंग पावर बढ़ती है, उससे गति मिलती है कंजम्पशन को. एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी या सारी सरकार की जो नीतियां हैं वो इस पर आधारित हैं कि कंज्यूमर की पावर, परचेजिंग पावर बढ़े, उसका जो जीवन का स्तर है वो बेहतर हो, और उसके लिए इन्फ्लेशन कम होना जरूरी है. लेकिन डेफिनेटली अगर हम प्रोड्यूसर की तरफ से देखें यानी किसान की तरफ से देखें, जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कम आया है,
खाने की चीजों की ही बात
तो ज्यादातर यहां पर अगर आप देखें तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आया है, और उसकी वजह से हम ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम देख रहे हैं. अच्छी खबर है उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, लेकिन कुछ हद तक ये प्रोड्यूसर्स के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है, बिकॉज उनको फेयर प्राइसेस मिलने में थोड़ी परेशानी होती है. तो अभी अगर हम स्तर देखें ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो 3.16 है, मुझे लगता है अभी तक ये कोई चिंता का विषय नहीं है। यदि इससे आगे हम देखते हैं कि और प्राइसेस नीचे आते हैं तो शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और एग्रेसिवली मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करना पड़ेगा। जो पिछली आरबीआई की पॉलिसी थी, उन्होंने इस बात को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट किया था कि अब इन्फ्लेशन बहुत नीचे लेवल पर आ रहा है और हमारे पास हेडरूम है मॉनेटरी पॉलिसी ईज करने का, इसलिए स्टांस जो था मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस वो उन्होंने अकोमोडेटिव यानी ईजिंग मनी पॉलिसी की तरफ रखा था। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शनली वी आर स्टिल कंफर्टेबल, पर यहां पर और थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को और मजबूत करने की जरूरत है।
Puneet, two things. A, in India, we say that the RBI says inflation should be between 4% and 6%. US says not less than 2%. When we see the statistics here, rural inflation 1.85% and urban is 1.64%. That puzzles me.
So, Lalima, so it's right. First of all, I think central banks across the world, they also have a minimum level of inflation and upper band of inflation. So RBI says inflation should be between 4% and 6%. Like Subodh said earlier, there has to be balancing between benefits for the consumers and benefits for the producers. So producers must also get fair price for their produce.
Right.
So therefore, like you said, the USA says we don't want inflation to be below 2%. They want inflation to be around 2%. In India, we say it should be between 4 and 6%. So we understand that lower than a certain level of inflation is not particularly good for the economy, because that means the consumption is not is falling. Like you mentioned, in rural India, if you see, if inflation falls below a certain level, then we need to be aware of it. We need to be conscious of that fact, and probably take steps to push consumption higher. So I think the message here, if you see the rural and the urban comparison, then it draws that the difference between the two.
Is it always a tightrope walk for the government to balance between inflation and growth, Puneet?
Absolutely. In fact, and therefore, the government at times, it will prioritize inflation and put less emphasis on growth. Uh-huh. And that is the time when we see higher interest rates. Interest rates will be increased to control inflation and sacrifice growth. Now, of course, with inflation not being such a major issue, government will shift its stance to supporting growth through monetary and fiscal policies, and they will not be so bothered about inflation. So the government policies change accordingly.
Okay.
क्योंकि वही inflation के आंकड़े अगर ठीक ठाक हैं, मतलब जिसको कहते हैं काबू में हैं हमारे, तो फिर सरकार के लिए जैसा अभी इन्होंने कहा कि हेडरूम है, थोड़ी जगह है खेलने के लिए कि चलो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ क्या कहें हम उसे
नहीं, और जो इंसेंटिव्स देते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, तो आप काउंटर साइक्लिकल है, तो आप थोड़ा इकोनॉमी को
बूस्ट करने के लिए
बूस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट,
बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी गुंजाइश बनती है। चलिए अब सेंसेक्स पे नजर डालें। आज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल के उछाल के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली का रुख रहा और निवेशक कुछ हद तक एहतियात बरतते दिखे। सेंसेक्स आज 1282 अंक यानी 1.55% गिरकर 81148 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 346 अंक यानी 1.39% गिरकर 24578 पर रहा। लेकिन बीएसई के मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बढ़त देखी गई। मिड कैप 0.17% और स्मॉल कैप लगभग 1% ऊपर रहा।
All right, let's take a look at the stocks in detail. The benchmark domestic equity indices today ended with losses of around 1.5% as markets took a breather amid profit booking and cautious sentiment from investors following the previous session's massive rally. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex slumped 1,282 points or 1.55% to close at 81,148. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 346 points or 1.39% to settle at 24,578. However, the broader market indices at the BSE bucked the trend. The mid-cap index added 0.17%. The small-cap index rose almost 1%. In the Sensex pack, 25 out of 30 companies edged down. In the top laggards, Infosys slid over 3.5%, Power Grid slipped 3.4%, and Eternal dipped almost 3.4%. Well, among the top gainers, Sun Pharma rose over 0.8%, Adani Ports added almost 0.5%, and Bajaj Finance increased almost 0.3%. In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, focused IT declined over 2.4%, tech dropped almost 2.4%, and IT slipped 2.2%. Among the top gainers, industrials advanced over 1.2%, capital goods gained over 1%, and healthcare as well as services both increased over 0.9% each. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,559 companies advanced, 1,402 declined, and shares of 140 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 43 companies hit their 52-week high, while 10 companies hit their 52-week low. So, Puneet, looking at the geopolitical situation which the country has gone through, I think India is unstoppable. I mean, come what may, the FIIs may pull out, we may be having a kind of a war situation at the borders, but we refuse to be cowed on, and the Sensex just is soaring. What do you say? The fundamentals too strong right now?
So, Lalima, it's interesting to look at the Indian stock markets or Indian stock markets being the proxy for the economy. Mm-hmm. I would say it is interesting to look at the markets over the last 1.5 months, because that is a crucial period in which a lot of events happened. We had a tariff scare in USA. We had almost this global trade war happening, and then we had war on our shores, in a sense. And it was a very difficult period.
Yes.
Normally, such a time would have seen a very sharp fall in stocks and a lot of loss of confidence on behalf of investors. But what we saw in India was this optimism, even when the markets were going down, and there was this despair that things may turn into a big war or something. We saw a lot of optimism among investors. Markets remained largely stable, and yesterday when good news came, the markets really soared. So we had 1,000 point on rally on Nifty. Today, if you see, we just had a pullback of about 30%, 35% of the rise which happened yesterday. So we saw a 1,000 point rise yesterday, and we saw a pullback of about 350 points. So clearly, I think overall, if you see, markets have done extremely well. And I think going forward, it just shows how well positioned the Indian economy is, how well managed. And today we get this good news about inflation being under control, which raises the prospects of lower interest rates going forward. So I think overall, the macroeconomic management of the economy has been phenomenal, despite tremendous challenges on the international scene. We haven't seen that in many countries. Honestly, I mean, if you look at Europe, you look at many other countries, the situation has been difficult for them. But in India, I think we've done very well.
और भारत के निवेशकों ने काफी भरोसा दिखाया है अपने बाजार के प्रति.
बिल्कुल, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कई महीनों तक लगातार बड़ी जबरदस्त सेलिंग कर रहे थे, उस दौरान भी भारतीय निवेशक बने रहे. इन्वेस्टर्स
एसआईपी के आंकड़े बड़े जबरदस्त,
हाँ जबरदस्त, मतलब करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए महीना. और इस पूरे दौरान जब ये ट्रेड टेंशन भी थी और पहलगांव के जो हादसा था उसके बाद भी वो इन्फ्लोज बने रहे.
लेटेस्ट आंकड़े भी बहुत अच्छे
थे, कमाल की ये बात है.
और जो आपने अभी कहा था, तो श्रोताओं को हम याद दिला दें कि जैसे आज हम 1.5% की गिरावट देख रहे हैं, कल बाजार बढ़ा था, लेकिन हम जैसा इन्होंने कहा कि एक महीने का आंकड़ा देखते हैं, तो एक महीने में करीब 6.25% हमारा सेंसेक्स बढ़ा था. 6 महीने के आंकड़े पर देखें तो करीब हम 4.5% अप हैं, और एक साल पहले के मुकाबले अभी भी 3.25% से ज्यादा ऊपर है. तो सेंसेक्स,
हाँ,
बिल्कुल, एक साल आसान नहीं था ये.
और सुबोध, ये काफी डिफिकल्ट पीरियड भी था पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. आसान नहीं था, पूरी दुनिया में हमने देखा था काफी पुलबैक थे मार्केट्स में. तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रदर्शन जो रहा है वो स्टॉक मार्केट का really mein bahut outstanding raha.
I think in lighter vein, I can say it's not the Kumbh Mela which we organize, which is a case study for our, you know, could be a case study for places like Harvard. It could also be our economy, which could be a case study.
The resilience,
despite everything. everything, despite COVID, despite Trump's announcements, and despite FII's pulling out, and despite this war-like situation, we're still holding it out so well.
So it's just not the weapons which are battle-tested. I think the markets also got battle-tested.
Yes. एक और सेक्टर पुनीत जो खास तौर पर अभी बात करना चाहूंगा वो पिछले कुछ समय में जब हम देख रहे थे डिफेंस सेक्टर के लिए और डिफेंस के लिए जब कुछ म्यूचुअल फंड्स भी स्पेशली जब उसके लिए आए थे और कि उसमें करेंगे और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था
शुरुआती दौर में
हालत बहुत ही खराब थी और बल्कि एडवाइजर्स बता रहे थे कि भाई इस तरह इससे जरा दूर ही रहो. अभी जो हालत देख रहा हूँ और अब जो स्थिति बन गई है अभी भी हम संघर्ष विराम पर हैं, युद्ध विराम नहीं है, ठीक है, संघर्ष जारी है और विराम है. और हम इंटरनेशनल, जैसे अभी हम चेंगडू की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया की नजर उस पर भी थी कि कल जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया है चेंगडू का शेयर 9% गिर गए,
बिल्कुल,
जो कि 5 दिन में 50% से ज्यादा बढ़ गए थे, 50-60% बढ़ गए थे. तो लगता है बहुत कुछ है जो सिर्फ मतलब सुनी सुनाई बातों पर भी बहुत कुछ चल रहा होता है. बहुत सारे तथ्य जब सामने आते हैं तब वो असलियत पर धरातल पर आता
है. और दूसरी बात है, देखिए सुबोध जी, की खास बात क्या है कि जो एक प्रकार तो जो सरहदों पर हमारी लड़ाई थी, एक वो एक जंग थी, लेकिन इकोनॉमिक जंग जो है यहां पर, यदि आप देखें और भारतीय जो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स, भारत डायनेमिक्स जो ब्रह्मोस बनाती है उसके शेयर्स, इन कंपनी के शेयर्स तेजी से बढ़े कल. और ये बात साबित हुई कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, बैटल टेस्टेड हैं और बड़े रिलायबल हैं, और इससे जो एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज हैं वो खुली,
बहुत खुली.
तो और मार्केट्स ने इसको एंडोर्स किया. देखिए, एक तो है बैटल ऑफ नैरेटिव्स कि आप ये बात कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि जो चेंगडू जो कंपनी फाइटर प्लेन्स बनाती है चाइना के लिए, उसके शेयर्स में इतनी भारी गिरावट आई, तो मार्केट्स ने एक तरह से आप कह सकते हैं दे वोटेड विद द मनी इन व्हाट इज द करेक्ट स्टोरी. उन्होंने सही स्टोरी क्या है उसके लिए उसको दर्शाया.
जी, भारतीय कंपनियों के आंकड़े आए लालिमा की अभी लगभग अनलिमिटेड ऑर्डर्स है हमारे डिफेंस कंपनियों के पास अभी, और खास करके मिसाइल बनाने वाली कंपनियों और उसके कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों के पास अभी करंट ऑर्डर्स, मतलब लगातार वो इसमें बता नहीं रहे कि कितने हैं.
बस देखिए, सबसे इसमें एक और बहुत अच्छी बात हुई है, काफी बड़े लेवल पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो प्राइवेट सेक्टर का भी था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का था और स्टार्टअप्स का. आप हैरान होंगे जो ड्रोन जो एंटी जो हमारा डिफेंस सिस्टम से, उसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल रहा. और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो स्टार्टअप पूरा इकोसिस्टम है पर्टिकुलरली डिफेंस से रिलेटेड, उसमें काफी बड़ी एक गति आएगी इसके बाद.
एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाज सेंट्रल टू द आत्मनिर्भर भारत स्कीम व्हिच आई थिंक वी हैव मेड इन इंडिया मिशन एंड व्हिच हैज नाउ वी कैन से दैट इट हैज रियली शोन सक्सेस.
इट इज काइंड ऑफ प्रूवन इटसेल्फ. इट इज
एग्जैक्टली, यस यस,
दैट्स अ वेरी वेलकम.
हमारे साथ, भारत के साथ ये है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी कम होता है, जैसे हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में साबित करके दिखाया है. तो डिफेंस प्रोडक्शन में भी हम ये साबित करके दिखा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा बाजार हो सकता है,
बहुत बड़ा बाजार. क्योंकि देखिए, अफ्रीका एशिया के कोई जो देश हैं जो इतना महंगा इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे लगता है भारत के लिए वो काफी बड़ी मार्केट है.
एज इट इज बी एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस,
बट आई थिंक दिस इज लाइकली टू,
दिस इज वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट,
एंड बट आई थिंक इट विल गो अप मल्टीपल फोल्ड्स.
जी, आइए देखें रुपए का क्या हाल रहा है. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए आज एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में सिर्फ 4 पैसे बढ़कर 85.34 रुपए पर बंद हुआ. इससे पहले आज भारतीय मुद्रा में थोड़ी तेजी देखी गई थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम होने और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध खत्म होने के आसार से रुपए को बल मिला था. लेकिन फिर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, मजबूत अमेरिकी मुद्रा और घरेलू बाजार में गिरावट से तेजी खत्म हो गई. दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.58 पर चल रहा था. इसके साथ ही हम एशिया और यूरोप के बाजार पर भी नजर डालते हैं. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख बना रहा. जापान का निक्केई 1.4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.17%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.13% बढ़कर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में ज्यादा बदलाव नहीं रहा, लेकिन हांगकांग का हैंगसिंग 1.8% से ज्यादा गिर गया। ताजा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में हल्की तेजी देखी जा रही थी। जर्मनी के डैक्स, फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी 100 तीनों में 0.1% की बढ़त बनी हुई थी। चलिए हम इन बाजारों पर पुनीत से बाद में बात करेंगे, अमेरिका के बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं पहले।
जी, एब्सोल्युटली। यूएस स्टॉक्स एंडेड शार्पली हायर ऑन मंडे आफ्टर द यूएस एंड चाइना अग्रीड टू टेम्पररीली स्लैश टैरिफ्स, ब्रिंगिंग सम होप्स फॉर द ईजिंग ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। ऑल द थ्री मेजर इंडिसेस रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट सिंगल डे परसेंटेज गेन्स सिंस अप्रैल 9। द नैस्डैक कंपोजिट सर्ज्ड ओवर 4.3%, S&P 500 गेन्ड ओवर 3.2%, and Dow Jones Industrial Average climbed more than 2.8%. Climbed, well, I would say that they have climbed down the China and US and come to a certain platform, and where they were talking about 245% tariffs, they really come down to 10%. Could you throw some light on this, Puneet?
So, Lalima, the China-US drama, actually. And yeah, if you see this whole whole episode, mm-hmm, right from April, boils down to US versus China. In fact, so US raised tariffs against everybody in the world. Then they rolled back tariffs against all other countries except China. Mm-hmm. And then eventually, after talks with China, they are beginning to roll back tariffs on China. So I think the gist of the story is that it is US versus China in the global trade wars, so to say. And all of the countries are kind of spectators, or rather collateral damage, you can also say, right, in this whole battle. Right. So I think that is what markets are focused on. And interestingly, when Subodh was reading out the story today on Asian and European markets, you will see that despite this massive jump in US stock markets yesterday, Asian markets and European markets did not rise very significantly, except Japan, because Japan, of course, is impacted more directly by this trade war. So my own sense is that as we go forward, things will now start stabilizing in the global markets. Mm-hmm. The Asian and European markets are already kind of taking it a bit cool right now. And going forward, I think the US markets will also stabilize now. We've seen a lot of volatility.
Yes.
The VIX, the volatility index in US, mm-hmm, had at one point shot up to 40%. So expecting 40%, you can say, movement in the indices. And today that index has now fallen to about 16-17%, which is fair.
Mm-hmm.
So And that tells us what is likely to happen going forward. So I think VIX's volatility index is telling us that much of this uncertainty is now behind us. Going forward, we'll see some more stability.
हाँ, क्योंकि दुनिया में वैसे भी लग रहा है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच भी शायद शांति हो जाए, बातचीत के लिए कम से कम आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा लगता है वो अब लड़कर थक गए हैं और वो अब कुछ शांति वो भी चाहते हैं।
I think the bottom line is that in this whole India has always believed in Vasudhaiva Kutumbakam, and it's a symbiotic relationship, one country with the other. You know, no one country can live like
और
an
वैसे
island.
भी हाँ लालिमा, अब तो स्थिति वही हो ही गई है कि अब को दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है और आइसोलेटेड नहीं है, हर किसी पर हर किसी का असर पड़ता है।
All right, let's take a look at another story coming from the U.S. Well, the U.S. President Donald Trump signed an executive order aimed at lowering drug prices, demanding that drug companies offer prices for prescription drugs comparable to those in other developed nations. Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. will establish a mechanism through which American patients can buy their drugs directly from manufacturers who sell to Americans at a most favored nation price, bypassing middlemen. Trump told reporters at the White House before departing for the Middle East that they are going to pay the lowest price there is in the world. According to recent data, the prices Americans pay for brand name drugs are more than three times the price other OECD nations pay, even after accounting for discounts manufacturers provide in the United States, the order noted. The United States has less than 5% of the world's population, yet funds roughly 75% of global pharmaceutical profits, according to the order. So,
एक और खबर अमेरिका की है जी,
जी, जी, जी, जी।
और भारत ने इस्पात और एल्युमिनियम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों का मुकाबला करने के लिए जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO को चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया है। भारत का कहना है कि अमेरिका के कदम सामान्य व्यापार और शुल्क समझौते GATT 1994 और सुरक्षा उपायों पर समझौते AOS के अनुरूप नहीं है। WTO में अमेरिका का कहना था कि भारतीय वस्तुओं पर शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से लगाए गए थे और उन्हें सुरक्षा उपाय नहीं माना जाना चाहिए। प्रस्तावित शुल्क दरें अभी WTO के अधिसूचना चरण में है। भारत ट्रंप प्रशासन के साथ एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। WTO के अनुसार अमरीकी सुरक्षा उपायों से भारतीय उत्पादों के 7 अरब 60 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर असर पड़ेगा, जिसमें अनुमानित शुल्क संग्रह 1 अरब 91 करोड़ डॉलर है। तो अभी जैसा लालिमा ने बताया, कुछ पॉजिटिव बातें हैं और कुछ ये बातें हैं जो थोड़ी शंका उत्पन्न कर रही हैं। पुनीत
सुबोध जी, देखिए जो जो भारत का जो स्टैंस है WTO में, पर्टिकुलरली सेफ गार्ड ड्यूटीज को लेकर, वो एक टेक्निकल स्टैंस है। मुझे नहीं लगता कि भारत इसको ज्यादा परस्यू करेगा, क्योंकि हमारी ट्रेड डील जो है यूएसए के साथ, दैट इज इन द वर्क्स, वो होने वाली है और काफी एडवांस स्टेज पे है। तो मुझे लगता है वो सब इन विषयों को, इन चिंताओं को वो एड्रेस करेंगे, और मुझे लगता है वो ट्रेड डील जो है भारत और यूएसए के बीच, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसकी रूपरेखा शायद अगले कुछ सप्ताह में हमारे सामने होगी।
And Vinay ji, if US lowers prices of their prescription drugs, one third of drugs coming from India, but they are generic drugs, I believe, which go to the US, would that affect our exports?
In fact, there is a school of thought which says that India will probably benefit, because Indian companies are able to supply drugs at much lower costs. And it is the middlemen, like the order also says, it is the middlemen who are making such a huge profit in USA. It is not the Indian companies. Uh-huh. So Indian manufacturers may actually be encouraged to supply more to US markets. Interestingly, if you look at the stock market today, because markets have a very uncanny way of analyzing these things, and they're usually very accurate. Yeah. Today, the Indian pharmaceutical company stocks actually went up in India. Yesterday, they went down because there was a fear that there may be no tariffs imposed. But today, in pharma company stocks actually went up in India, which gives me confidence that we'll not be affected negatively by this order.
Okay, great. That sounds great. And moving on, India's major ports have registered remarkable growth in cargo handling in the last financial year. In a statement, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways said that the country's ports handled 819 million tons of cargo in financial year 2023-24, which increased to 855 million tons in financial year 24-25, marking an annual growth of 4.3%. It was further mentioned that the increase in traffic was driven by a 10% rise in container throughput and a 13% increase in fertilizer cargo handling compared to the previous fiscal year.
और सोना चांदी पर भी जरा गौर करें। सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.05% बढ़कर 94,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.25% बढ़कर 96,700 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.93% बढ़कर 93,766 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.31% बढ़कर 96,596 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।
And look at the oil prices. Well, oil prices rose today. However, gains were capped as traders assessed whether the pause in US and China trade war will lead to a long-term deal. Brent crude was trading over 0.8% up at $65.52 per barrel. WTI crude was trading 1% up at $62.57 per barrel when reports last came in. So, Puneet, your comments on both the oil and the metal.
Sona, humne 1 lakh ke aaspaas dekha hai. अब 94,000 पे है। तो क्रूड हमने कम होता हुआ देखा था, क्रूड अब थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है।
डायरेक्शन में चल रहा है, क्रूड नीचे से ऊपर आया है और सोना ऊपर से थोड़ा करेक्शन हुई है। देखिए, ये सब डॉलर और ये आपने जैसे पहले कहा कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, तो जैसे हमने डॉलर में जब ट्रेड वॉर चल रही थी डॉलर इंडेक्स में हमने कमी देखी थी, उसकी वजह से हमने गोल्ड में काफी तेजी देखी। अब ये थोड़ा नॉर्मलाइज, जैसे हम कह रहे हैं थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई है गोल्ड में, और मुझे लगता है जो अब हम लेवल्स देख रहे हैं वो करीब करीब स्टेबल लेवल्स हैं। क्रूड ऑयल भी यहाँ पर स्टेबलाइज होगा थोड़ा सा, और गोल्ड भी पर्टिकुलरली मुझे लगता है जो क्रेजी एक
बाइंग हो रही थी,
क्रेजी बाइंग थी, ऐसा एकदम लग रहा
था थे युद्ध
न जाने कहां ये जाएगा, तो मुझे लगता है वहां भी कोई अब स्टेबल होगा। तो कुल मिलाकर क्रूड को अगर हम देखें तो क्रूड में क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि वहां भी जो स्टेबलाइज होगा। और सेकेंडली रिसेशन का जो फियर है वो कम हुआ है, तो इसलिए क्रूड प्राइस में हम तेजी देख रहे हैं।
जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और बहुमूल्य चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सुबोध।
All right, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. India's retail inflation eases to 3.16% in April, lowest since July 2019. Benchmark domestic equity indices end around 1.5% down amid profit booking. Sensex slumps over 1,200 points. Nifty closes below 24,600. And India proposes retaliatory tariff to counter US duties on steel and aluminium at WTO. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra, and our expert, Puneet Jain, signing off. Namaskar. Market.